ओम शांति। आज का सवेरे का जो सत्र है, अपने आध्यात्मिक अस्तित्व की पहचान, मनुष्य जीवन के अंदर ये एक बहुत बड़ा प्रश्न सदियों से है, हु एम आई, मैं कौन हूं। और इस पहेली को समझने के लिए कई लोगों ने कई प्रकार की तपस्याएं की, लेकिन जितना ही उसको समझने का प्रयत्न किया उतना ही कहीं न कहीं कंफ्यूज्ड होते गए। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान ने अर्जुन के अनेक प्रश्न जो प्रथम अध्याय में रहे उसका उत्तर दूसरे अध्याय में आत्मा के यथार्थ परिचय के आधार से ही देने का प्रयत्न किया। श्रीमद् भगवद गीता हम सभी पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं अभी तक ये बात हम सबके सामने भी क्लियर नहीं हुई कि आखिर भी मेरी वो वास्तविकता क्या है। भौतिक जगत के अंदर मनुष्य ने बाहर की दुनिया को तो एक्सप्लोर कर दिया, लेकिन भीतर की दुनिया भी एक बहुत बड़ी दुनिया है जिसको अभी तक एक्सप्लोर नहीं कर पाए। बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर किया तो इतनी प्रगति किया, ठीक इसी तरह अगर भीतर की दुनिया को भी हम एक्सप्लोर करें तो उतनी ही जीवन के अंदर उन्नति कर सके। लेकिन वो समझ न पाने के कारण ही कहीं न कहीं उन्नति के बजाय आज इंसान अधोगति की ओर ही बढ़ता गया। इसलिए आवश्यकता है कि हम अपनी उस वास्तविकता को सही तरीके से समझे, पहचाने। कई बार कई लोग सोचते हैं आखिर भी उसको समझने से क्या मिलेगा, क्योंकि आज मनुष्य अपना टाइम वही इन्वेस्ट करना चाहता है जहां से कुछ प्राप्ति हो। अगर प्राप्ति ही नहीं तो वहां टाइम क्यों लगाएं? ठीक इसी तरह आत्मा का अस्तित्व जो भी हो, आखिर प्राप्ति क्या है? हम भारतवासी इतना तो सभी जानते हैं, मानते हैं कि हां, शरीर को चलाने वाली कोई चैतन्य शक्ति है जो अजर अमर अविनाशी है, जिसको आत्मा कहा गया। और क्या जानना है? वो शरीर में जब प्रवेश करती है तो जन्म होता है, और शरीर को जब छोड़ करके चली जाती है तो मृत्यु कहलाता है। और क्या जानना है? प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो महाभारत की बात याद आती है कि अर्जुन जैसा एक वीर योद्धा था जिसने अनेकों युद्ध अकेले हाथ जीते, परंतु जब महाभारत का समय आया तो वो इतना उदास, हताश, निराश हो गया जो उसने अपने शस्त्र छोड़ दिए और भगवान से विनती करने लगा, हे प्रभु, मुझे ये युद्ध नहीं करना, आई डोंट वॉन्ट टू फाइट। क्या कहेंगे उस समय? क्या अर्जुन का आत्मविश्वास खत्म हो गया? भगवान उसके साथ थे और भगवान ने गारंटी ली थी कि पांडवों की विजय होगी, तो फिर क्या भगवान पर भरोसा नहीं रहा? जो शस्त्र छोड़ दिए और युद्ध करने के लिए मना कर दिया, न आत्मविश्वास कम हुआ था, न भगवान पर भरोसा कम हुआ था, तो फिर ऐसी मनोदशा क्यों? आज मनुष्य का जीवन अगर देखे उसी की भेंट में, तो मनुष्य जीवन भी एक संघर्ष है, जहां हर वक्त इंसान को युद्ध करना पड़ता है। हर इंसान युद्ध कर रहा है हर पल, कोई अपने आप से लड़ रहा है, कोई दूसरों से लड़ रहा है, कोई हालातों से लड़ रहा है, कोई परिस्थितियों से लड़ रहा है। कौन है जो लड़ नहीं रहा है? हर कोई लड़ रहा है। कई बार इस लड़ाई में, इस संघर्ष में हम विजयी भी हुए हैं, लेकिन जीवन के कई मोड़ ऐसे भी आते हैं जब अर्जुन की तरह व्यक्ति भी हताश, निराश, उदास हो जाता है, और उस वक्त कहीं न कहीं वो भी अपनी प्रार्थना में ईश्वर से यही कहता है कि हे ईश्वर, कब तक लड़ता रहूंगा? क्या संघर्ष का कभी अंत होगा कि नहीं होगा? एक पूरा नहीं होता है, दूसरा शुरू होता है, कभी इकट्ठे आ जाते हैं तीन चार, कब तक लड़ते रहेंगे? और जब ऐसी मनस्थिति हो जाती है जिसको आज के युग में डिप्रेशन कहा जाता है, तनाव ग्रसित हो जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है, हीनता की भावना आने लगती है, ऐसे समय पर ही आत्मा के ज्ञान की आवश्यकता है। जब अर्जुन की ऐसी मनस्थिति हो गई, तब भगवान ने भी उसको आत्मा का ज्ञान दिया। दूसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में भगवान ने अपना परिचय दिया, छठे अध्याय में ध्यान योग सिखाया, मेडिटेशन सिखाया, और 45 मिनट में 18 अध्याय का ज्ञान दे करके इस डिप्रेशन वाली स्थिति से उसको बाहर निकाला, ऐसा मोटिवेट किया कि युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। यानी आध्यात्मिकता में वो ताकत है जो कैसा भी डिप्रेशन वाला व्यक्ति क्यों ना हो, उसको 45 मिनट के अंदर ही वो मोटिवेट कर सकता है। और उसमें भी सबसे पहले आत्मा का ज्ञान। तो सोचो कि वो आत्मा के ज्ञान में कितनी ताकत है। अगर डिप्रेशन वाले इंसान को ठीक कर सकता है बिना किसी दवाइयों के, तो उसके लिए तो टाइम देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? गीता में भगवान ने अर्जुन को योग सिखाया, जहां हर चैप्टर योग है। आज की दुनिया में योग योगा हो गया, और योगा फिजिकल एक्सरसाइज तक सीमित हो गया। आसन, फिजिकल एक्सरसाइज, उसको योगा कह दिया। लेकिन भगवान ने जब अर्जुन को योग सिखाया, कहीं पर भी एक्सरसाइज नहीं कराई, और उसको सही कर दिया। उसकी स्पिरिचुअल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ को हील कर दिया 45 मिनट्स के अंदर। ये है आध्यात्मिकता की शक्ति। तो आत्मा का ज्ञान, आत्मा की वास्तविकता क्या है? जीवन को अगर देखा जाए तो जीवन भी एक योग है। योग का शाब्दिक अर्थ है जोड़, संबंध, मिलन। जिस तरह वियोग माना सेपरेशन, ऐसे योग माना कनेक्शन। आज की दुनिया में मनुष्य का कनेक्शन अनेकों के साथ अनेक लेवल पर होता है। हमारा जब भौतिकता के साथ संबंध है तो उसको कहते हैं भौतिक योग है। जब हमारा समय के साथ संबंध होता है और कोई कार्य अचानक समय पर हो जाए तो कहते हैं समय का संयोग था जो ये कार्य हो गया। हमारा संबंध व्यक्तियों से है, और किसी व्यक्ति से समय पर अगर मदद मिल जाती है तो यही कहते ये व्यक्ति का सहयोग था। योग निरंतर चलता है जीवन के अंदर, परंतु राजयोग एक सर्वश्रेष्ठ योग है आत्मा का पिता परमात्मा के साथ। एक सर्वश्रेष्ठ संबंध है, और उसके लिए आत्मा को भी यथार्थ रीति से जानना जरूरी है और परमात्मा को भी जानना जरूरी है। जीवन को अगर देखें तो जीवन भी एक योग है, जहां शरीर और आत्मा का संबंध हुआ। अकेला शरीर है तो जीवन नहीं कहेंगे, अकेली आत्मा है तो जीवन नहीं कहेंगे। जब शरीर और आत्मा का मिलन होता है उसी का नाम तो जीवन है। इस जीवन के अंदर हम शरीर की वास्तविकता को बहुत अच्छे से जानते हैं कि शरीर माना 5 तत्व, और इसीलिए शरीर जीवन जीने के लिए वही 5 तत्वों की मांग करता है। आज ऑक्सीजन चाहिए, क्यों? शरीर बना है ऑक्सीजन से। पानी चाहिए, क्यों? क्योंकि 60-70% शरीर के अंदर पानी का हिस्सा है। व्यक्ति जब पानी पीता है तो सोच के नहीं पीता है कितना पीना है, लेकिन जैसे अंदर का वाटर लेवल बैलेंस हो जाता है अपने आप ग्लास छोड़ देते हैं। एक्सेस नहीं पीते कि कल के लिए चलेगा, शरीर रखता भी नहीं है, उसको फेंक देगा। तो ये 5 तत्व जीवन जीने के लिए शरीर को चाहिए, क्योंकि यही शरीर की वास्तविकता है। ठीक इसी तरह शरीर में जो चैतन्य शक्ति आत्मा है, आत्मा को भी जीवन जीने के लिए कुछ चाहिए, या सोचते कि आत्मा निर्लेप है, उसको कुछ नहीं चाहिए? चाहिए? क्या समझते हैं? शरीर को 5 तत्व चाहिए, शरीर में आत्मा को जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए, और शांति चाहिए, और भक्ति चाहिए। भक्ति भी क्यों चाहिए? शांति चाहिए, और श्वास तो शरीर का चलता है, ज्ञान चाहिए, त्याग चाहिए, प्रेम चाहिए। हर इंसान को जीवन जीने के लिए 7 गुण चाहिए, 7 गुण। इसीलिए आत्मा को कहते आत्मा सतोगुणी है, द एसेंस ऑफ 7 वैल्यूज। और वो 7 गुण जिसके लिए गीता में भगवान ने अर्जुन से 2 अध्याय में कहा कि हे अर्जुन, स्वधर्म को पहचानो। कई लोग सोचते हैं कि भगवान ने अर्जुन को जब स्वधर्म कहा तो क्षत्रिय धर्म के विषय में कहा कि भाई तुम क्षत्रिय होने के कारण, क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, तो तुम शस्त्र क्यों छोड़ रहे हैं? तो क्या गीता का ज्ञान खाली क्षत्रियों के लिए है? नहीं, गीता का ज्ञान सारी मानव जाति के लिए है। तो मानव जाति का स्वधर्म क्या है, यानी गुण धर्म क्या है? हर चीज का अपना एक गुण धर्म है। पानी का गुण धर्म है शीतलता, अग्नि का गुण धर्म है गर्मी। पानी को कितना भी उबाल लो, खौलता हुआ पानी हो और कहीं आग लग जाए और कोई साधन नहीं है आग बुझाने का, वो खौलता हुआ पानी है, क्या करेंगे? उड़ेल देंगे और आग बुझ जाएगी। ये नहीं कि खौलता हुआ पानी आग को और भड़का देगा। पानी अपना गुण धर्म नहीं छोड़ता है, है ना? ठीक इसी तरह हर आत्मा का गुण धर्म क्या है? कोई भी जाति के हो, कोई भी धर्म के हो, कोई भी भाषा के हो, कोई भी देश के हो, जिस तरह शरीर को 5 तत्व चाहिए, वो ये नहीं देखता है कि भाई भारत वाला है इसलिए इसको अलग क्वालिटी की हवा पानी दो, अमेरिका वालों को अलग क्वालिटी की हवा पानी दो, या अमीरों को अलग क्वालिटी की हवा पानी दो, गरीबों को अलग क्वालिटी की हवा पानी दो, या हिंदू धर्म वालों को अलग दो, दूसरे धर्म वालों को अलग दो, कोई भेद नहीं रखा। 5 तत्व सारे संसार के प्राणी मात्र के लिए एक समान कुदरत ने बना के रख दिया। ठीक इसी तरह इस शरीर के अंदर जो चेतन शक्ति आत्मा है, कोई भी धर्म के हो, देश के हो, भाषा के हो, हर आत्मा को भी ये 7 गुण आवश्यक है जीने के लिए। कौन से 7 गुण? जो उसका गुण धर्म है। सबसे पहले है ज्ञान, सबसे पहले है ज्ञान। ज्ञान क्यों चाहिए? क्योंकि मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा अज्ञान है कौन सा? मनुष्य जीवन में आज सबसे बड़ा अज्ञान कौन सा है? अहंकार। सबसे बड़ा अज्ञान है अहंकार। ज्ञान के अभाव के कारण ही तो अहंकार विकसित हुआ। ज्ञान तो व्यक्ति के अंदर निर्माणता ले आता है, निर्मलता लाता है। अहंकार सबसे बड़ा ज्ञान है, और इसीलिए बचपन से लेकर के हर इंसान ज्ञान चाहता है। आज एक छोटा बच्चा हो, रोता हुआ, बोलना नहीं सीखा है, रो रहा है, लेकिन आप उसको एक आवाज करने वाला खिलौना सामने रख दो, क्या करेगा? चुप हो जाएगा। कहां से आवाज आ रही है? समझने का प्रयत्न करता है। समझने की जिज्ञासा उस वक्त से है। सबसे पहले ज्ञान चाहिए। थोड़ा बड़ा होता है वो आवाज वाला खिलौना उसके सामने रखो, उसको तोड़ने का प्रयत्न करता है कि ये आवाज कहां से आ रही है, देखना है। और जैसे ही वो उसको पटका और आवाज बंद हो गया तो खुश होता है, मैंने इसका आवाज बंद कर दिया, है ना? जिज्ञासा उस वक्त से है जब इंसान बोलना भी नहीं सीखा है। हर इंसान को ज्ञान चाहिए, लेकिन ज्ञान के बदले आज अज्ञान विकसित हो गया। किसी ने बहुत सही कहा है कि आज इंफॉर्मेशन की दुनिया है, और इंफॉर्मेशन की दुनिया में कहीं ज्ञान लुप्त हो गया। इंग्लिश में कहावत है, वी हैव लॉस्ट नॉलेज इन इंफॉर्मेशन। और उससे आगे और एक कदम है कि वी हैव लॉस्ट विजडम इन नॉलेज। आध्यात्मिक प्रज्ञा जो है उसको कहीं ना कहीं भौतिक ज्ञान में खो दिया, और भौतिक ज्ञान को भी, या जिसको कॉमन सेंस कहा जाता है दुनिया में, उस कॉमन सेंस को भी हमने इंफॉर्मेशन में खो दिया। आज मनुष्य के पास, एक बच्चे के पास दुनिया भर की सूचनाएं हैं, लेकिन सूचनाएं नहीं चाहिए, ज्ञान चाहिए, और ज्ञान से भी आगे आध्यात्मिक प्रज्ञा चाहिए, स्पिरिचुअल विजडम। स्पिरिचुअल विजडम क्यों चाहिए? क्योंकि उसी से ही हम, पहला, एक तो अहंकार को गला देंगे, समाप्त कर देंगे, और दूसरा व्यवहारिक कुशलता को विकसित करेंगे। आज के बच्चे के अंदर देखो व्यवहारिक कुशलता ही नहीं है। कुछ भी उसको कहो, आई डोंट केयर उसको कहो, ऐसा नहीं कहा जाता। बड़े हैं, व्यवहारिकता अपनी बनाए रखो, आई डोंट केयर कहता है कि नहीं कहता है? तो व्यवहारिक कुशलता समाप्त हो गई, इसीलिए ज्ञान चाहिए, है ना? और ये अज्ञानता से जीवन के अंदर खुशी नहीं है। अहंकार से क्या व्यक्ति के जीवन में खुशी है? नहीं। अहंकारी एक न एक दिन अकेला हो जाता है, कोई उसके समीप भी नहीं जाना चाहता है, और जब अकेला हो जाता है तब डिप्रेशन का शिकार बनता है। तो ज्ञान के अभाव के कारण ही यह अहंकार आया, और अहंकार के कारण जीवन क्या हो गया है, आज इंसान अकेला हो गया है, कोई उसके समीप नहीं जाना चाहता है। किसी ने बहुत सही कहा है, सारी ज्ञान की पुस्तक, जितनी भी दुनिया में इंफॉर्मेशन की एनसाइक्लोपीडियाज है, अगर उन एनसाइक्लोपीडियाज को ले आओ बाहर में, पाइल अप करो और उसकी होली का जलाओ, तो द हीट प्रोड्यूस्ड इज मोर देन द लाइट। और आज सही में यही हो गया है, मनुष्य ने जो दुनिया भर का ज्ञान हासिल किया है उससे क्या हुआ है, द हीट इज मोर देन द लाइट। अहंकार की गर्मी जरूर चढ़ गई, व्यवहार में रोशनी नहीं आई। द हीट इज मोर देन द लाइट। इसीलिए ज्ञान चाहिए। और आज जहां अहंकार टकराता है, कितने रिश्ते टूट रहे हैं, कितने परिवार टूट रहे हैं, देयर इज नो सॉल्यूशन, उसका कोई समाधान ही नहीं हो सकता है। अहंकार का कोई समाधान है? इसीलिए आज व्यक्ति का जीवन की क्वालिटी जो है धीरे धीरे अधोगति की ओर जा रही है। इसीलिए ज्ञान चाहिए। यह आत्मा की ओरिजिनल आइडेंटिटी है जिससे हम बहुत दूर चले गए। जहां ज्ञान है वहां शुद्धि है, प्यूरिटी है। जहां समझ है, ज्ञान माना समझ, जहां समझ है वहां शुद्धि है। जहां अहंकार है वहां अशुद्धि है। तो आज इंसान को क्या चाहिए? शुद्धि चाहिए, प्यूरिटी, निर्मलता। कोई व्यक्ति बहुत भोला होता है, जो अंदर है वही बाहर है, तो लोग क्या कहते हैं, ये भगवान का बंदा है, जो अंदर है ना वही बाहर होगा, कोई उसमें डुप्लीकेसी नहीं होगी। लेकिन जो अहंकारी है वो अंदर कुछ बाहर कुछ, उसको कहा स्प्लिट पर्सनालिटी, है ना। और जैसे ही लोगों को पता चलता है इसके अंदर कुछ है बाहर कुछ है, तो क्या कहते हैं, बड़ा खतरनाक है, पता ही नहीं चलता अंदर क्या है। किसके समीप जाना चाहते हैं, खतरनाक के सामने या भोले के सामने? कहते इसे तो ये भोला अच्छा है, कोई खतरा तो नहीं है, कोई नुकसान तो नहीं करेगा, ये तो कब नुकसान कर दे पता ही नहीं चलता है। आज की दुनिया में व्यक्ति अपने आप को बहुत होशियार समझता है कि लोगों को पता ही नहीं चलता है मेरे अंदर क्या है, लेकिन सबको पता चल जाता है कुछ ही समय के अंदर। और धीरे धीरे लोग ऐसे व्यक्ति से दूर होने लगते हैं, नजदीक नहीं जाने लगते हैं। जहां शुद्ध वातावरण है, पवित्र वातावरण है, अच्छा लगता है, इंसान भक्ति क्यों करता है, सोचता है इससे आत्म शुद्धि होती है। शुद्धि चाहिए। एक बच्चा जब पैदा हुआ तो कितना शुद्ध और पवित्र है, वो अच्छा लगता है। एक पवित्र बच्चे को कोई टेंशन वाला व्यक्ति उठा भी लेता है तो उसके वाइब्रेशन से वो व्यक्ति कुछ क्षण के लिए अपना टेंशन भी भूल जाता है। इतना पावरफुल होता है। मंदिर में जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां जो शुद्ध वाइब्रेशन है, वातावरण है, सुकून देता है, इसीलिए जाते हैं। तो इंसान को शुद्धि अच्छी लगती है, पसंद है। क्यों? क्योंकि यही उसकी वास्तविकता है। जहां अशुद्धि है वो पसंद नहीं है। कोई बात बात में अगर झूठ बोलता है पसंद नहीं आता है कि इसका उसके अंदर सच्चाई नहीं है, अच्छा नहीं लगता है इस व्यक्ति के सामने। और जिसके अंदर सच्चाई है अच्छा लगता है। अगर उससे कुछ नुकसान भी हो जाए कोई बात नहीं, और झूठ बोलने वाले का अंदर उसके प्रति गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि सच्चाई नहीं है। तो प्यूरिटी ये दूसरा गुण है जो आत्मा की वास्तविकता है। लेकिन आज की दुनिया के अंदर उस प्यूरिटी से हम बहुत दूर चले गए और इतनी इम्प्यूरिटीज आ गई है जो मनुष्य जीवन में भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है, क्योंकि अपनी वास्तविकता से बहुत दूर है। जहां अहंकार है, अशुद्धि है, उस संबंध में कभी प्रेम पनप सकता है? पनप सकता है। और आज हर इंसान को क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। पशु पक्षी को भी प्रेम चाहिए, इंसान को भी प्रेम चाहिए, बच्चे को भी प्यार चाहिए, तो बड़े बुजुर्ग को भी प्रेम चाहिए। कि सोचते हैं कि बड़े बुजुर्गों ने सारा जीवन बहुत प्यार पाया, अभी बुढ़ापे में प्यार नहीं मिला तो चलेगा? चलेगा नहीं। बुढ़ापे में भी जब कोई प्यार से व्यवहार करता है तो अच्छा लगता है। हर इंसान को प्यार चाहिए, और वह भी प्यार कैसा? अनकंडीशनल, कंडीशन के बेसिस पर नहीं। स्वार्थ युक्त प्यार नहीं चाहिए, निस्वार्थ प्यार चाहिए। जहां निस्वार्थता है वहां अच्छा लगता है, जहां स्वार्थ होता है अच्छा नहीं लगता है। और सबको समझ में आता है। आज आप अपने बच्चे से भी बहुत प्यार से बात करो तो वो भी आपको कहेगा मतलब की बात करो, इतना प्यार दिखाने की जरूरत नहीं। कहेगा कि नहीं कहेगा? मतलब की बात करो कि भाई क्या मतलब है आपका? ये प्यार दिखावा नहीं चाहिए, वो भी अनकंफर्टेबल फील करता है। तो आज हर इंसान को दुनिया के अंदर निस्वार्थ प्यार चाहिए। चौथा, जहां ये तीनों है, अंडरस्टैंडिंग है, ज्ञान है, शुद्धि है, प्रेम है, वहां शांति है, रिलैक्स्ड। स्वार्थ होगा, आज की दुनिया के अंदर लोग बहुत प्यार से जब बात करते ना तो भी टेंशन हो जाता है, पता नहीं इसका क्या मतलब है आज, है ना? शांति खत्म हो जाती है। और हर इंसान को क्या चाहिए आज? शांति चाहिए। कौन सी शांति? स्मशानी शांति चाहिए? स्मशान में चले जाओ शांति मिलेगी, चाहिए वो शांति? स्मशानी शांति नहीं चाहिए। कौन सी शांति चाहिए? परिवार में रहते हुए, सबके बीच में रहते हुए, मेरा मन शांत रहे, ये शांति चाहिए। नहीं तो आज हिल स्टेशन पर चले जाते हैं कई लोग घूमने के लिए, भाई थोड़े देर के लिए शांति तो मिले टेंशन से दूर, लेकिन उसके बाद वापस आएंगे या नहीं आएंगे घर में? कारोबार है, घर है, परिवार है, तो आना ही है। लेकिन हमें कौन सी शांति चाहिए कि घर परिवार कारोबार सब कुछ करते हुए हमारा मन रिलैक्स्ड रहे, शांत रहे, अस्वस्थ न रहे। ये शांति हर इंसान चाहता है, है ना? और जहां ये चारों है वहां जीवन में सच्चा सुख है। आज ये चारों ही नहीं है तो सुख कहां से होगा? न प्रेम है, न शांति है, न अंडरस्टैंडिंग है, तो सुख कहां से होगा? इसलिए भौतिक सुख सुविधा के साधन सारे हैं, लेकिन फिर भी सुख नहीं है। डनलप के गद्दे पर सोने के बावजूद भी नींद नहीं है, दवाइयां लेनी पड़ती है, चैन की नींद कहां है? एक बहन यहां कुछ समय पहले आई थी, कहने लगी 12 साल से मैं नींद की गोलियां खाती हूं, लेकिन कल रात को पहली बार मुझे बिना गोली के जो नींद आई, 12 साल के बाद मुझे नींद आई जिस नींद के लिए मैं तरसती थी, यहां के वातावरण के अंदर जो शुद्धि है, जो शांति है, जो प्रेम है, उसने मुझे एक सुकून की नींद दिया। सोचो 12 साल के बाद उसको नींद आई हो। कहा ऐसा वातावरण क्या हम अपने घर में नहीं बना सकते? बना सकते? नहीं बना सकते, जरूर बना सकते, क्यों नहीं बना सकते? तो सुख सुविधा के सारे साधन होने के बावजूद भी सुख कहां है? सुख नहीं है। और जहां पांचों ही नहीं है वहां छठा गुण आनंद। आनंद तो बहुत दूर की बात है, पहला स्टेप जो खुशी चाहिए वो खुशी भी नहीं है। आज खुशी का अनुभव करने के लिए भी लोगों को लाफिंग क्लब्स ज्वाइन करने पड़ते हैं, बगीचे में जाके हंसना पड़ता है, घर में हंस नहीं सकते हैं। घर में अगर मुस्कुराए तो सबसे पहले तो घर वाले पूछते क्या बात है, आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं? और अगर व्यक्ति ने कह दिया बस ऐसे ही, क्यों मुस्कुरा नहीं सकते, तो क्या कहते हैं? दिमाग ठीक है? आर यू ओके? यानी मन बिना वजह के आप मुस्कुरा नहीं सकते, कैसी विडंबना है, कैसी जीवन की क्वालिटी बना दिया है हमने कि मन मुस्कुराहट के लिए भी वजह चाहिए और वो वजह हम सबको एक्सप्लेन कर सके, बताना पड़ता है क्यों मुस्कुरा रहे हैं। ये क्वालिटी है लाइफ की, कैसी जीवन बना दिए हमने। आज एक व्यक्ति अगर ऑफिस में मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर जाता है तो लोग इशारा करते क्या बात है, आज सर खुश है, जो काम करवाना हो करवा लो, है ना? इसीलिए भी व्यक्ति टाइट होके चलता है, भाई लोग मेरा एडवांटेज न ले, है ना? नेचुरल नहीं है हम, नेचुरल नहीं है। एक बच्चा मुस्कुराता है, कोई पूछता है उसको वजह क्या है तेरी मुस्कुराहट की? नींद में मुस्कुराता है, कहता कितना सुकून मिल रहा होगा जो नींद में भी मुस्कुरा रहा है। उसको कोई वजह नहीं पूछता है, ये उसकी नेचुरल स्टेट है। लेकिन आज की दुनिया के इंसान को हर समय एक जस्टिफिकेशन देना पड़ता है कि मैंने मुस्कुराया क्यों। और लोग जब उस बात को एक्सेप्ट करें तब जाकर के सुकून मिलता है हमें, चलो एक्सेप्ट तो हो गया, चाहे वो झूठ ही बोला हो। ये लाइफ है क्या? तो हम अपनी नेचुरल वास्तविकता से कितना दूर चले गए। और जहां ये छह बातें हैं वहीं सातवा गुण शक्ति है। आज हर इंसान भगवान के पास मंदिर में जाकर क्या कहते हैं, हे प्रभु शक्ति दो। कौन सी शक्ति चाहिए? किसी से लड़ाई करने की? सहन शक्ति चाहिए, और कोई शक्ति नहीं चाहिए? विल पावर नहीं चाहिए? शक्ति चाहिए, आत्मविश्वास या आत्मशक्ति चाहिए जिसमें सारी शक्तियां निहित हो। सहन करना क्या, सामना करना क्या, समाना क्या, हर शक्ति निहित हो, है ना? इसलिए कहा कि हे प्रभु शक्ति दो, क्योंकि वास्तव में ये छह गुण नहीं है, छह शक्ति है। पावर ऑफ नॉलेज, ज्ञान की शक्ति, पावर ऑफ प्यूरिटी, पवित्रता की शक्ति, प्रेम की शक्ति, पावर ऑफ लव, पावर ऑफ पीस, शांति की शक्ति, ये सारी शक्ति है। और जब ये सारी शक्ति हो तो कहेंगे हां आत्मशक्ति है। दूसरे शब्द में अगर मैं कहूं तो ये सातों गुण ये आत्मा की बैटरी है। लेकिन आज के युग में ये बैटरी डिस्चार्ज है, है ना? इसीलिए लोग उसको बाहर से चार्ज करने का प्रयत्न करते हैं। क्या करते हैं? लोग मुझे समझे, लोग मुझे प्यार दे, शांति चाहिए। महात्माओं ने कहा शांति बाहर नहीं अंदर है, सुख बाहर नहीं अंदर है, है ना? लेकिन हमने क्या किया, बाहर अपेक्षा रखते रहे, ये व्यक्ति मुझे शांति दे, ये व्यक्ति मुझे समझे, ये व्यक्ति मुझे प्यार दे, ये व्यक्ति मुझे सुख दे, मांगते रहे हम। मिल जाएगा? मांगने से मिल जाएगा? नहीं मिला, है ना? अपेक्षा रखने से नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि जैसे मेरी बैटरी डिस्चार्ज है उसकी बैटरी भी तो डिस्चार्ज है। अब डिस्चार्ज बैटरी को चार्ज कर सकती है, है ना? इसीलिए दुनिया में झगड़े जब होते हैं ना तो क्या कहते, हमने और कुछ थोड़ी तो शांति मांगी, थोड़ा प्यार चाहा, गलत किया क्या? इतना प्यार नहीं दे सकते, इतना सुख नहीं दे सकते। अरे पर हो तब तो दे ना। बैटरी उसकी भी डिस्चार्ज है, तुम्हारी भी डिस्चार्ज है, तुमने तभी उससे अपेक्षा रखी, वो आपसे अपेक्षा रख रहा है। और ये सारे झगड़े हैं दुनिया के अंदर। यही सात गुण चाहिए हर इंसान को, उसी के ही झगड़े हैं, और कोई झगड़े ही नहीं है। वो कहते हैं वो मुझे समझे, वो कहते हैं वो मुझे समझे, वो कहते हैं वो मुझे प्यार दे, वो कहते हैं वो मुझे प्यार दे, है वो मुझे सुख दे, वो मुझे शांति दे, वो मुझे खुशी दे। अपेक्षा रखी, और अपेक्षा रखने से कभी प्राप्त नहीं होता है। जब अपेक्षा रखने से प्राप्त नहीं हुआ, ये सात बातों की अपेक्षा रखी, तब दूसरा तरीका अपनाया चार्ज करने का, अननोइंगली। कौन सा? कर्म करो। लोग इसीलिए कर्म करते हैं, सोचते कर्म करेंगे तो शांति मिलेगी, कर्म करेंगे तो खुशी मिलेगी, कर्म करेंगे तो शक्ति प्राप्त होगी, इसलिए कर्म किया। आज इंसान धन कमाता है, किस लिए? किस लिए धन चाहिए? धन चाहिए किस लिए? सुख शांति से जीने के लिए। सोचते हैं धन होगा तो सुख शांति से जी सकेंगे, इसलिए धन कमाया ना। करोड़पति को पूछ लो, सुख शांति आ गई? क्या कहेंगे? भगवान की दया से सब कुछ है, लेकिन यही नहीं है। क्योंकि धन कोई माध्यम नहीं है आत्मा की बैटरी को चार्ज करने का। इट इज नॉट अ मीन्स टू चार्ज द बैटरी ऑफ द सोल। धन कोई माध्यम नहीं है, इसलिए धन आ गया, सुख शांति गायब हो गई। दूसरा, इंसान कर्म करता है कि भाई समाज सेवा करे। कई लोग समाज सेवा करते, पूछो समाज सेवा क्यों करते? कहते खुशी मिलती, आनंद मिलता, इसीलिए समाज सेवा करते हैं। पूछो आनंद मिला तो क्या कहते? अरे बहुत पॉलिटिक्स है, आनंद कहाँ? हमने तो सोचा था समाज सेवा करेंगे थोड़ा आनंद मिलेगा, लेकिन यहां भी इतना पॉलिटिक्स है, आनंद कहाँ? कई लोग शादियों पर जाते हैं, पार्टीज में जाते हैं। पूछो शादियों पर क्यों जाते हो, पार्टीज में क्यों जाते? कहते समाज में रहते हैं तो सबके साथ हमारा प्यार बना रहे, इसके लिए। पूछो प्यार बना तो क्या कहते? अरे एक को खुश किया, दो नाराज हो गए। बना कहां, बिगड़ता ही जा रहा है। इतने पार्टीज में जाते, हर बार कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती, एक तो नाराज हो ही जाता है, फिर उसको खुश करने में लगे रहो, तो बना कहां, बिगड़ता ही जा रहा है। कई लोग गंगा स्नान करने जाते, पूछो गंगा स्नान क्यों करते? कहते आत्मशुद्धि के लिए। अरे इतना सहज तरीका होता, फिर तो सारे क्रिमिनलों को ले जाकर गंगा स्नान करा देना चाहिए। आत्मशुद्धि का अगर इतना सहज तरीका हो तो जेल बनाने की जरूरत है क्या? ले जाओ सारे क्रिमिनलों को डुबकी लगवा दो, आत्मशुद्ध हो गई, छोड़ दो, फिर उसके बाद हो जाएगा? ऐसे कोई आत्मशुद्धि नहीं होती है। तो विभिन्न कर्म किए कि एक भी गुण आ जाए साथ में से, तो कम से कम दूसरे को हम जनरेट कर सकेंगे। लेकिन नहीं आया, इसीलिए दिन प्रतिदिन और क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी क्या होती जा रही है, डिटोरिएट होती जा रही है। तब तीसरा तरीका अपनाया, कौन सा? भगवान को याद करो, ही इज द सोर्स, वहां से मिलेगा। हमने भगवान से ये सात गुणों के सिवाय और कुछ नहीं मांगा, देखना। बचपन से लेकर के एक प्रार्थना सिखाई है स्कूल में, अज्ञान से हमें ज्ञान की ओर ले चलो हे प्रभु, गाया बचपन में सभी ने। सबसे पहले ज्ञान मांगा, दूसरा फिर कहा मैली चादर ओढ़ के आया रे द्वार तेरे प्रभु, तू साफ कर देना। भगवान भी पूछता है कब तक, कब तक साफ करता रहूं, कब तक तुम मैले होते रहेंगे? बच्चा भी ना समझ जब तक होता है तो मैला होता है, मिट्टी में खेलता है। समझदार होने के बाद कोई मिट्टी में खेलता है? तो भगवान भी पूछते हैं कब तक मैं साफ करता रहूं, कब समझदार बनोगे? तीसरा कहा, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। हे प्रभु, एक बूंद भी मिल जाएंगे तो बहुत है जीवन जीने के लिए, तू प्यार का सागर है। चौथा कहा, हमको मन की शांति देना। हे प्रभु, हमको मन की शांति देना। पांचवा कहा, हे प्रभु तू हरि है, उसको याद दिलाया। पहले तीन में तो मांगते रहे, अज्ञान से हमें ज्ञान की ओर ले चलो। दूसरा कहा, मैली चादर ओढ़ तू साफ कर देना। तीसरा कहा, तू प्यार का सागर, एक बूंद भी दे दो तो चलेगा। चौथा फिर उसको याद दिलाया, तू हरि है, दुख हरो, सुख दो, है ना, हरी कहा ना उसको। फिर पांचवा कहा, तू सच्चिदानंद स्वरूप है, आनंद दो। और लास्ट में तो धमकी दे दी, इतनी शक्ति देना दाता जो विश्वास कभी कम न हो। यानी अगर शक्ति नहीं मिली तो विश्वास खत्म हो जाएगा, फिर आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, यू आर रिस्पॉन्सिबल। मेरा विश्वास खत्म हुआ तो, है ना, धमकी दिया ना अनजानेपन में ही। देखो भजन भी कैसे बनाते हैं कि इतनी शक्ति देना दाता जो विश्वास कभी कम न हो। माना अगर कम हो गया विश्वास तो हु इज रिस्पॉन्सिबल, आप रिस्पॉन्सिबल है कि इतनी शक्ति हमें मिली नहीं। तो या तो उससे मांगते रहे, या तो उसको याद दिलाते रहे तेरा कर्तव्य क्या है, या तो लास्ट में धमकी दे दिया, हो गई चार्ज बैटरी, हो गई चार्ज, नहीं हुई। क्योंकि कोई चीज थोड़ी है जो ऊपर वाले ने फेंका और हमने रिसीव कर लिया यहां पर, इसलिए हुई नहीं। अब बैटरी चार्ज करना चाहते हैं तो आज मैं एक सरल तरीका आपको बताती हूं, सरल तरीका। पहला तरीका है, वैसे तीन तरीके हैं बैटरी चार्ज करने के। पहला तरीका है, अपेक्षा रखने के बजाय देना शुरू करो, देना शुरू करो। जितना देंगे उतना मिलेगा और बढ़ेगा, बांटने से बढ़ता है, यही कहावत है। ज्ञान बांटो तो बढ़ेगा, खुशी बांटो तो बढ़ेगी, है ना। जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, तो बांटना चालू करो। दुनिया में हर चीज दे रही है। किसी ने बहुत सुंदर वो गीत लिखा है, नदी न पिए अपना जल, पेड़ न खाए अपना फल, वो भी दूसरों को बांट रहे हैं। प्रकृति के हर तत्व दे रहा है, इसीलिए तो उसको देवता कहा, सूर्य देव कहा, वायु देव कहा, इंद्र देव कहा, दे रहे हैं ना। प्रकृति के हर तत्व तो दे ही रहे हैं, लेकिन आज इंसान की बनी हुई चीज भी दे रही है। जिस कुर्सी पर बैठे हैं, ये कुर्सी आराम दे रही है कि नहीं दे रही है? दे रही है? ये माइक दे रहा है, ये लाइट दे रहा है, ये छत दे रही है, हर चीज तो दे रही है। कौन सी चीज इंसान की बनी हुई है जो नहीं दे रही है? सब कुछ दे रहा है सिवाय मनुष्य के। मनुष्य ले रहा है, ले रहा है, ले रहा है, और इसी प्रोसेस में वो देना भूल गया, इसीलिए अपेक्षा हो गई। अभी अब हरेक से, इंसानों से भी अपेक्षा होने लगी। आज से ये रूल चेंज कर देते हैं, जो कुदरत का रूल है देना, देना चालू करो। जितना देंगे उतना बढ़ेगा। आज इस चीज से प्रेरणा लेकर के हम अपने जीवन के अंदर उसको अप्लाई करें कि आज से मुझे देना है। देखो बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, है ना? बढ़ेगा ही, और बैटरी चार्ज होने लगेगी। गाड़ी की बैटरी को चार्ज रखना हो ना तो गाड़ी को चलाना पड़ता है। ला करके शोरूम से खड़ा कर दिया, साल दो साल चलाओ ही नहीं तो क्या होगी, बैटरी चार्ज हो जाएगी। तो हमने भी बांटना बंद किया इसलिए बैटरी डिस्चार्ज हो गई। अब बैटरी को चार्ज करना है तो क्या करना पड़ेगा, देना चालू करो, बांटना चालू करो, देखो बैटरी का चार्ज होना शुरू हो जाएगा। शिकायत बंद हो जाएगी, ये मुझे प्यार नहीं देता, ये मुझे समझता नहीं, ये मुझे शांति नहीं देता, ये समाप्त हो जाएगी। देना शुरू करो, बढ़ने लगेगा। दे सकेंगे, दे सकेंगे पक्का? कितने दिन, कितने दिन देंगे? हमेशा? अच्छा, जो कहते हैं हम यहां से जाने के बाद भी हफ्ता 10 दिन तो जरूर देंगे, देने का प्रयत्न करेंगे। वाह, इतने देवता प्रकट हो जाए। देने वाले को तो देवता कहेंगे ना, तो इतने देवता अगर प्रकट हो गए एक शिविर से, एक प्रोग्राम से, तो हमारे प्रोग्राम की तो सफलता कहेंगे ना। और अगर अच्छा लगे 10 दिन देने में आपको, और हमेशा देना चाहते हो, जो कहते हैं हम हमेशा देंगे, हमेशा के देवता बन जाएंगे, वेरी गुड, है ना, वेरी गुड। इतने देवता अगर हमेशा के लिए, तो फिर संसार परिवर्तन संभव है या नहीं है, है? और उसके अग्रदूत कौन है? महिलाएं, वंदे मातरम, वंदे मातरम आपको, है ना, भगवान भी इसीलिए कहते हैं। अगर माताएं इतना देना चालू करें अपेक्षा रखे बिगर, तो फिर तो संसार का उद्धार संभव है कि नहीं, संभव है ना। तो इसीलिए मुबारक हो आपको ऐसे देवता बनने की। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का लक्ष्य बताया जाता है मनुष्य से देवता बनाना, ये हमारा लक्ष्य है। जिस तरह एक कॉलेज में पढ़ने वाला भाई, उसके सामने लक्ष्य होता है, मुझे मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले के सामने लक्ष्य रहता है मुझे डॉक्टर बनना है, लॉ कॉलेज में पढ़ने वाले के सामने लक्ष्य रहता है मुझे लॉयर बनना है, तो यहां जो आध्यात्मिक शिक्षा मिलती है उसका लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनना। और देवता बनना माना देने वाला बनो। ऐसा देवता बनना संभव है या नहीं है? देने वाले को ही लोगों ने याद किया है। संसार के अंदर किसको याद किया जाता है? जिसने संसार को कुछ दिया है। लेने वाले को कभी याद नहीं किया जाता है, देने वाले को ही याद किया जाता है, चाहे अच्छा दिया हो या बुरा दिया हो। मीरा को जहर देने वाले को याद किया है, इसने जहर दिया था, है ना। जिन्होंने लेना ही लेना है तो लोग उसको भी कहेंगे कि भाई क्या क्या ये लाइफ है, लेने वाले क्यों बनते हो, देने वाले बनो। हाथ ऊपर जिसका है, देने वाले का, लेने वाले का तो हाथ हमेशा नीचे रहता है। तो आत्मा की वास्तविकता ये 7 गुण, और ये 7 गुण जब से आप देना शुरू करेंगे, इसमें कोई खर्चा नहीं लगता है। दे सकते हैं, क्या क्या दे सकते हैं? आप किसी को खुशी दे सकते हो, आप किसी को सम्मान दे सकते हो, आप किसी को शुभ भावना दे सकते हो, शुभकामना दे सकते हो, आप किसी को दुआ दे सकते हो, उसमें कोई खर्चा लगता है? कोई चीज देने की बात नहीं करती हूं मैं। आप ये देना चालू करो, देखो कितना अंदर में आत्मसंतुष्टि आपकी बढ़ने लगेगी, बैटरी चार्ज होने लगेगी। आज मोबाइल को भी रोज चार्ज करना पड़ता है, एक दिन चार्ज नहीं किया तो क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन आने लगेगा। ठीक इसी तरह आत्मा की बैटरी लास्ट कब चार्ज की थी? याद ही नहीं, चार्ज ही नहीं किया है कभी। फिर भी इतना साल, कितनी लाइफ लॉन्ग है बैटरी की, जो इतना साल तो चला दिया, अब तो चार्ज करो, अर्थात तो अब तो देना शुरू करो, है ना। अब तक बहुत लिया हमने, अब देना शुरू करते हैं। हर चीज को अच्छे वाइब्रेशन दो, प्रकृति को भी अच्छे वाइब्रेशन दो, सब चीजों को देना चालू करो, पुनः देवता बन जाए। जब ऐसे देवता बन जाएंगे ना देने वाले, किसी को सहयोग दो, किसी को साथ दो, किसी को मोटिवेशन के कोई दो शब्द कहो, ये तो कर ही सकते हैं ना, इसमें क्या खर्चा लगता है? लगता है कुछ भी नहीं लगता है। और उसके बाद आप देखो, आप किसी को दुआएं देने के बाद आपको क्या मिलता है? खुशी मिलती है कि नहीं? खुशी से बैटरी चार्ज होगी। आप किसी को मोटिवेट करने के वाले कुछ ज्ञान की बात कहो, देखो उसके बाद आपके जीवन में क्या होता है, एंड यू विल सी योर लाइफ कंप्लीटली चेंजिंग। एक ऐसा परिवर्तन महसूस करेंगे, इतनी क्वालिटी में बदलाव आ जाएगा जो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। तो देना शुरू करो, ये है आत्मा की क्वालिटीज, आत्मा की वास्तविकता, आत्मा के आध्यात्मिक अस्तित्व का परिचय। दूसरा तरीका चार्ज करने का है, एक तो देना चालू करो, दूसरा तरीका चार्ज करने का है मेडिटेशन। मेडिटेशन चार्जर है, और मन को स्रोत के साथ जोड़ना है, और जोड़ करके उस परमात्मा सर्वशक्तिमान से शक्ति को फ्लो होने दो, आने दो, और एक तरफ आता जाए दूसरे तरफ देते जाए, तो डबल चार्जिंग हो जाएगी या नहीं होगी? तो मेडिटेशन से चार्जिंग करो, रोज सुबह और शाम को दो टाइम जरूर मेडिटेशन करो। कितना मिनट, कितना मिनट करेंगे? 20 मिनट, 20 मिनट कर सकेंगे? अपने लिए टाइम मिलेगा? क्यों मैंने 20 मिनट कहा पता है? क्यों मैंने 20 मिनट कहा? मेडिकल साइंस द्वारा ये प्रमाणित है कि एक व्यक्ति अगर 5 मिनट गुस्सा करता है, बॉइलिंग टेम्पर एंगर, 5 मिनट, तो 2 घंटे की कार्य क्षमता जल जाती है। कहते हैं ना, क्रोधी के घर के मटके भी सूख जाते हैं। तो 5 मिनट का गुस्सा 2 घंटे की कार्य क्षमता को जला देता है। इतना व्यक्ति मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है गुस्सा करने के बाद कि 2 घंटे तक वो अपने माइंड को एकाग्र नहीं कर सकता है, इतना अंदर से हिल जाता है। तो 5 मिनट का गुस्सा 2 घंटे की कार्य क्षमता को जला देता है। वो 2 घंटे में क्या करेगा? 10 लोगों को ढूंढने का प्रयत्न करेगा जिसके सामने अपना जस्टिफिकेशन देगा, ये रोज ही ऐसा करता है इसलिए मुझे आज गुस्सा करना पड़ा, रोज ही ऐसा करता है। 10 लोग जब आप ढूंढेंगे, जो लोग कहेंगे आपको, हाँ अच्छा किया आपने गुस्सा किया, उसको पाठ तो पढ़ाया, तब जाके आपको थोड़ा शांति मिलेगी। अगर 10 में से 1 ने कह दिया ना आपने ठीक नहीं किया, फिर देखो क्या होता है, उसके ऊपर भी गुस्सा फ्लेयर अप हो जाते हैं, है कि नहीं? तो 5 मिनट का गुस्सा 2 घंटे की कार्य क्षमता को जला देता है, 20 मिनट का गुस्सा 8 घंटे की कार्य क्षमता को जला। कई दिन आपने महसूस किया होंगे, आज का दिन बहुत बुरा गया, कोई काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, पता नहीं सुबह किसका मुंह देखा था, अपना ही देखा था आईने में, है ना? किसी और पर दोष क्यों डाले। भावार्थ ये, किसी का मुंह देखने से दिन खराब नहीं होता है, लेकिन अपना जब नेगेटिविटी होता है तब जा करके नेगेटिव एनर्जी से जब आप दिन शुरू करो तो आपका दिन खराब जाता है। लेकिन जब आप पॉजिटिव एनर्जी से दिन आरंभ करो, मेडिटेशन मींस पॉजिटिव एनर्जी से आप खुद को चार्ज करो, और जब पॉजिटिव एनर्जी से आप दिन को आरंभ करेंगे तो आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। तो ये है दूसरा तरीका, ठीक है। तीसरा तरीका कल बताएंगे, ठीक है। शायद 2 मिनट हम सभी मेडिटेशन में बैठेंगे और अपने मन को कुछ क्षण के लिए और सभी बातों से समेट लेते हैं। अंतरचक्षु से स्वयं को देखो, त्रिकुट के मध्य में मैं चैतन्य शक्ति हूं। आत्मा हूं। मैं आत्मा प्रकाश पुंज हूं। अजर अमर अविनाशी शक्ति हूं। ये शरीर मेरा वस्त्र है जो मैंने धारण किया है। संसार रंगमंच पर अपना पात्र निभाने मैं आत्मा शरीर की कर्मेंद्रिय की मालिक हूं, अधिकारी हूं। मैं आत्मा अपने असली स्वरूप में सतोगुणी हूं। पवित्र निर्मल हूं। शुद्ध स्वच्छ मेरा गुणधर्म शांति है। मेरे मन की गति शांत हो रही है। इसी शांति में सच्चा सुख समाया हुआ है। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूं। इसी शांति में परम आनंद है। मैं आत्मा सत चित आनंद स्वरूप। इसी शांति में शक्ति है। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूं। मैं प्रेम स्वरूप। ज्ञान स्वरूप हूं। चारों ओर सतोगुण के प्रकंपन को प्रवाहित करती हूं। यही मेरी वास्तविकता है कि सतोगुण कि मेरा आध्यात्मिक अस्तित्व है। ओम